ओम शांति। सेल्फ केयर सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वर्च्यूज़ ऑफ सोल, आत्मा के सतोगुण जो आत्मा को सशक्त करते हैं और हमारे रोल की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, उन गुणों के ऊपर चिंतन करते हुए आज विशेष एक गुण जिस पर हम चिंतन करने वाले हैं वो है टायरलेसनेस, अर्थात अथकपन। थकावट जो है वो हमें आगे बढ़ने में हमारे लिए एक बैरियर के रूप में होती है, इसलिए अथक बन करके आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना ना, तब हम अपने उस मंजिल को पा सकते हैं और अपनी जर्नी को भी इंजॉय कर सकते हैं। जब हम अपनी जर्नी को इंजॉय कर सकते हैं तो सिर्फ डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन कोई हैप्पीनेस देगा ऐसा नहीं, लेकिन उस पूरी जर्नी को हमें इंजॉय करना है अगर, तो टायरलेस का गुण जो है वो हमें मदद करता है। हम अपनी हर मोमेंट को इंजॉय कर सकते हैं अगर हमारे अंदर अथकपन का गुण है। अथकपन अर्थात हम ड्रेन्ड, एनर्जी वॉश्ड आउट है ऐसा फील नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा हम एक्टिव, अलर्ट रहते हैं और आगे बढ़ने की उमंग और उत्साह को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, खुशी को बनाए रखते हैं और कोई भी परिस्थिति के अंदर हम नवीनता और अपने अंदर की आशा को हम नहीं छोड़ते हैं। आशा, उम्मीद के सहारे अपने अंदर हम अपनी अथकपन के गुण के साथ, न्यूनेस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और इसीलिए हम एक नए अच्छे कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो हमारे अंदर का ये अथकपन का जो गुण है ना, थकावट रहित जीवन जीने की जो हमारी कला है, वो हमें निरंतर रूप से हमारी एनर्जी को पॉजिटिव रूप में चैनलाइज करने में हमें मदद करती है। क्योंकि आप देखेंगे एक नदी भी होती है, वो अथक बन करके बहती रहती है तो सागर से मिलती है, उसके रास्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कितने पत्थर आते हैं, कितने प्रकार के रुकावटें आती हैं, लेकिन वो कहीं पर भी रुकती नहीं है और आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उस पूरी जर्नी के अंदर जहाँ पर भी आप देखेंगे पत्थर आए, उस पत्थर से टकरा करके पानी जब फ्लो करता है तो उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है ना? उस लहर को देखेंगे आप तो वो और भी सुंदर दिखती है। इस तरह से हमारे जीवन के अंदर भी जब हम अपने हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, बिना थके, बिना रुके आगे अविरत बढ़ते रहते हैं, तो हमारा वो उमंग, उत्साह, हमारे अंदर की नवीनता, हमारी क्रिएटिविटी एक बहुत ब्यूटीफुल अनुभव हमें कराती है और हम निरंतर रूप से दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और इस तरह से अथकपन का जो गुण है वो हमारे टाइम को सफल करता है, हमारी एनर्जी को सफल करता है, हमारे जीवन के अंदर जो उमंग, उत्साह है उसको बनाए रखता है, हमें नए रास्ते ढूंढने के लिए भी ना हमेशा इंस्पायर करता है। अगर कहीं पर भी बैरियर आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गई या कोई भी डिफ़िकल्टी आ गई, वहाँ पर भी अगर हमारे अंदर अथकपन का गुण है तो हम रास्ता बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी चींटी होती है, वो चींटी हमेशा अविरत चलती रहती है, थकती नहीं है। प्रकृति के अंदर ऐसे सारे प्राणियों को देखेंगे आप ना, उसमें चींटी का विशेष आप देखेंगे कि वो थकती नहीं है, रुकती नहीं है ना? एक छोटा सा बच्चा था, वो चींटी के साथ जैसे वो जहाँ से जा रही थी वहाँ पर उसके लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा था, तो वहाँ जहाँ पर वो चींटी को रास्ता में सामने दीवार सी नज़र आई, उसने फिर नया रास्ता बनाया और आगे बढ़ने लगी, वहाँ से फिर उसने रोका, फिर वो आगे बढ़ने लगी। तो इस तरह से अविरत आगे बढ़ने लगी तो उसके लिए आप देखेंगे वो रुकावट जो है उसको रोक नहीं पाई, क्योंकि अथकपन आगे बढ़ने का और एवरी मोमेंट आगे बढ़ने का जो लक्ष्य रखा है वो आप बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही एक मछली जो है उसको एक बच्चा खाना खिलाता है रोज़ ना, एक दिन उस बच्चे को मछली के साथ थोड़ी मस्ती करने का सूझा, उसने क्या किया, बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया और ग्लास रख दिया और फिर उसको खाना डाला, खाना डाला तो मछली को वो खाना दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस खाने को खाने के लिए गई, वो ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास से टकरा गई और उसने वापस अपने जगह पर चली गई और वो खाना दिखाई नहीं दिया। ऐसे 2-3 दिन तक होता रहा और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से टकराती थी और अपना जो है पुरुषार्थ उसने अगर छोड़ दिया, फिर उस बच्चे ने ग्लास हटा दिया, फिर खाना डाला, लेकिन अब भी मछली नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में वो जो अनुभव किया, बार बार उस ग्लास से टकराई, खाना नहीं मिला, तो उस प्रयास को छोड़ दिया और इसीलिए वो स्टार्वेशन से, भूख से मर गई मछली। क्यों? उसके अंदर में अगर आप देखेंगे, निरंतरता प्रयास करने की होती है, जो उसे थकावट आ गई और उस कार्य को उसने छोड़ दिया, और इसीलिए एक और प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास, एक और प्रयास को नहीं किया तो उसको खाना भी नहीं मिला और मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन के अंदर भी देखें, हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, उस कार्य को करते हुए निरंतर करते रहें, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार निरंतर करते रहते हैं, तो उसमें हर मोमेंट में हमें कुछ सीखने मिलता है, हमें कुछ प्राप्त हो रहा होता है। अगर उस प्राप्ति को, उस लर्निंग्स को हम नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर भी थकावट आती है और हम समझते हैं कि हमें फेलियर मिल रही है, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा। हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसको अगर हम देखते नहीं हैं, तो वहाँ पर हमें अंदर में थकावट आती है। इसी के अगर अब देखें कि हम जानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। एक होता है जानना ना, कि भाई हमने ये लक्ष्य को जाना और उसके प्राप्त करने का जो रास्ता है, तरीका है, उसको भी जाना और उसको माना भी, हाँ इस तरीके से ये चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलने की अगर शक्ति नहीं रखी, अगर उसमें हम थक गए, उसमें अगर हम रुक गए, चलना शुरू किया और बीच बीच में रुक गए, तो फिर वो रुकावट, बार बार रुकते हैं वहाँ पर भी थकावट होती है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव करते हैं और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते के अंदर, तो बार बार आपको स्टॉप करनी पड़ रही है गाड़ी, बार बार आपको स्टार्ट करनी पड़ रही है गाड़ी, तो बार बार रुकना, बार बार चलना, बार बार थोड़ा धीरे चलना, थोड़ा तेज चलना, ये जो बार बार का जो चेंजेस आता है ना, वो भी थकाता है। और इसीलिए हम देखें कि ट्रैफिक जहाँ पर है ज़्यादा ना, वहाँ पर थकावट हो रही है। निरंतर चलते रहते हैं, वहाँ पर थकावट नहीं हो रही है ना। लंबा रास्ता है और वही रास्ता, समझो 50 किलोमीटर आपको दूरी पर जाना है, लेकिन आप ट्रैफिक वाले समय पर जाते हैं, तो वहाँ पर थकावट ज़्यादा होती है, समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन आप अगर ऐसा समय चुनते हैं जिस समय में ट्रैफिक ना हो और आप उसी उसी डेस्टिनेशन को, उसने ही डिस्टेंस को आप इजीली कवर कर पाते हैं बिना थके, तो इस तरह से अगर हम देखें, जो टाइम के इम्पोर्टेंस को समझता है वो भी टायरलेस ना रह सकता है, जो अपने समय के महत्व को समझता है और अपने कार्य को पोस्टपोन नहीं करता है। जहाँ हम अपने कार्य को पोस्टपोन करते हैं, अपने टाइम की कदर नहीं करते हैं, हमारे काम को हम ड्रैग करते रहते हैं, वहाँ पर थकावट होती है। हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, हाँ कर तो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें, मतलब उस कार्य को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो हम अपने लिए थकावट, क्योंकि कोई भी चीज़ जितना एनर्जी, जितना टाइम लगनी चाहिए, उससे अधिक मात्रा में हम लगा देंगे, तो वहाँ पर हमें खुशी नहीं होगी ना, और वहाँ थकावट भी ज़रूर होगी। इसीलिए हमें अपने समय की कदर, इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और उसके लिए अगर हम उस कार्य को अच्छी तरह से समझे, जो लक्ष्य हमने लिया है उसमें कितना समय लग सकता है हमें, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें और अपनी उसमें एफर्ट्स भी कंटिन्यूस रेगुलर करते रहें, तो हम अपनी एनर्जी को प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। नहीं तो हम ड्रैग करते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे कार्य को, तो वहाँ पर हमारे अंदर ज़रूर थकावट आएगी और फिर हम उस कार्य को छोड़ भी देते हैं, भाई पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये तो डिफ़िकल्ट है बहुत, और कहीं ना कहीं इस तरह से हम अपने लिए फेलियर्स लेकर आते हैं, क्योंकि हमने खुद उस कार्य की इम्पोर्टेंस को, समय की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा और अपने लिए खुद बैरियर क्रिएट किया। और आप देखेंगे जहाँ पर हम इम्पेशेंस हो जाते हैं वहाँ पर भी थकावट आती है ना। कोई कार्य हम कर रहे हैं और उस कार्य को करने के लिए ना जो हमारे एफर्ट्स लगने चाहिए, जितना समय लगना चाहिए वो तो लगना ही है, लेकिन निरंतरता को हम छोड़ करके इम्पेशेंस हो जाते हैं, कब होगा कब होगा। तो वहाँ पर भी जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, पेशेंट है, और अगर वो बीमारी के लिए कुछ दवाइयाँ कर भी रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट में पूरा जो फेथ के साथ नहीं कर रहे हैं या डाउट्स के साथ कर रहे हैं उन चीज़ों को, या ना बार बार अपने डॉक्टर्स या ट्रीटमेंट को चेंज करते रहते हैं और वो बीमारी को वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर वो थकावट, इम्पेशेंट हो जाते, कब होंगी ये बीमारी ठीक, और वो इम्पेशेंस जो है वो उनको थकावट और रुकावट के अंदर ले आता है। तो इसीलिए इम्पेशेंट नहीं हो करके हम अगर पेशेंस रखें और प्रॉपर टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करें, जो ट्रीटमेंट, जैसे अगर बीमारी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है, वो वाली हमने करनी है, और इसी तरह से जो कोई लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए हमारे को क्या ज़रूरी कार्य उसके लिए करने, उसका प्रोसेस क्या है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, उसके नॉलेज अगर प्रॉपर ले लेते हैं हम, उसके प्रोसेस को हम ना स्टेप बाय स्टेप ठीक रीति से करते हैं, इम्पेशेंट होकर के नहीं लेकिन पेशेंस के साथ ना, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे जीवन के अंदर इस धैर्यता के गुण को हमें ना अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर धैर्यता का गुण नहीं है तो वहाँ पर भी हमारे जीवन में थकावट आती है, और हमारे जो ओल्ड मेथड्स होते हैं अगर हम उन्हीं को बार बार यूज़ करते रहते, समझो कोई लक्ष्य लिया हमने, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हमने, कुछ तरीका किया और उसमें वो सफलता नहीं मिल रही, तो उनको नए तरीके से हमें कुछ करने, उसके अंदर हमारी न्यूनेस को, हमारी क्रिएटिविटी को ऐड करने की ज़रूरत है। उसको अगर हम नहीं समझते हैं और उस बात में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं और जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे तो वैसे ही रिजल्ट बार बार मिलते रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा ना। जैसे कोई कार्य करने के लिए अगर कोई कोई प्राप्ति नहीं हो रही है या बिगड़ गया है कोई कार्य, अब ये जब ठीक होगा ना सब कुछ तब हम करेंगे, लेकिन उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या एफर्ट्स करने हैं ना, उस एफर्ट्स पर मैं कितना ध्यान रख रही हूँ ना, वो हम नहीं करते। हम सोचते कुछ जादू चमत्कार या कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर हम ये करेंगे, नहीं, हम कुछ करेंगे तब वो सब कुछ ठीक होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हमारे एफर्ट्स जो हैं उनको हमें नवीनता के साथ करना है, क्रिएटिविटी के साथ करना है और पॉजिटिविटी के साथ करना है, तब हम एक नया रीति से जब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो माता पिता उनको जिस तरह से चलाएंगे वैसे चलते हैं वो, क्योंकि बहुत छोटे हैं ना। लेकिन वही बच्चा जब टीनेज में आता है आप उसी तरह से उसको ट्रीट करेंगे जैसे बचपन में ट्रीट करते थे, तो अब वो डिफ़िकल्टी आएगी रिलेशंस के अंदर ना, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे ना, वहाँ पर ना जो खींचातान विचारों का ना मिलना भी होगा ना, और वहाँ पर रिलेशंस में हम डिसहार्मनी या डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अनुभव करेंगे। तो जब डिफरेंट एज में आया वही बच्चा तो उसके साथ डील करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, कि अब उसकी ज़रूरतें, अब उसको डील करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा, वो नवीनता को अपनाएंगे, उसके साथ अगर हम करेंगे नहीं तो हमारे अंदर में थकावट आएगी कि भाई ये रिलेशन में बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बार बार ना टकराव हो रहा है, तो वो हमें थकाता है। इसीलिए हमें अगर ना संबंधों के अंदर भी ना डिफरेंट लोगों के साथ जिस तरह से पहले व्यवहार करते थे उसी प्रकार से इस बच्चे के साथ वैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, परिस्थितियाँ बदलती है, हर चीज़ बदलती है, तो हमें उस प्रकार से अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, नहीं तो हम वैसे ही रिजल्ट्स प्राप्त करते रहेंगे जैसे पहले प्राप्त कर रहे थे, और कोई भी परिवर्तन या कोई भी न्यूनेस, कोई भी डेवलपमेंट हम अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी थकावट ज़रूर आएगी। तो न्यूनेस और नवीनता जो है हर एक को पसंद होती है, तो नवीन रिजल्ट प्राप्त करके भी हमारे उमंग उत्साह जो है वो बने रहते हैं। इसीलिए नवीनता के साथ कार्य करने की क्षमता भी हमें अपनी बढ़ानी होती है। और अगर हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं ना कि क्या चीज़ें हमारे पास नहीं हैं ना, या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को हम देखते रहते हैं अगर, तो वहाँ पर भी हमारे जीवन में थकावट आती है, हम थक कर रुक जाते हैं ना। निरंतर चलते रहें तो थकावट नहीं होती है, लेकिन थक कर चलकर रुक जाते हैं वहाँ पर थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो वास्तव में इंसान जो है काम से कभी नहीं थकता ना, कार्य करने से थकता नहीं है, लेकिन कार्य करते समय उसकी विचारधारा कैसी है, उस कार्य के प्रति उसका विचारधारा कैसी है, जिनके साथ कार्य कर रहा है उन लोगों के प्रति विचारधारा कैसी है, या उसके लक्ष्य के लिए उसकी विचारधारा कैसी है, उन सब पर डिपेंड होती है हमारी ना अंदर की अनुभूति ना। हम उमंग उत्साह के साथ कर रहे हैं, अथक बनकर कर रहे हैं, या थकावट में आ रहे हैं, तो हमारी विचारधारा उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम विचार कैसे कर रहे हैं, कार्य तो करना ही है ना, वो कार्य में समझो आधा घंटा लगना है ना, समझो सिंपल सा काम खाना बनाने का, घर में खाना बना रहे हैं, लेकिन खाना बनाने का कार्य समझो 4 लोगों के लिए खाना बनाना है, आधे घंटे का समय लगना है। अब आधे घंटे का समय लगना है, लेकिन अगर विचारधारा में कहीं पर भी नकारात्मक विचार है कि रोज़ रोज़ मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, कोई मदद भी नहीं करता, इस प्रकार की कई प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के साथ कर रहे हैं, तो वो आधे घंटे का, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है, और वो विचार जो है हमें थकाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर रुक रुक करके काम भी करते हैं ना, एनर्जी जो है वो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हो रही है, और वो रुकावट बार बार हमें रुक रुक करके चलना थकावट में ले आता है। अगर हम निरंतर पॉजिटिव विचार के साथ उस कार्य को कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त करते हैं, और एनर्जी भी सेव करते हैं, टाइम भी सेव करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर अपनी निरंतरता को बनाए रखना, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे सामने हमारी इस विद्यालय की ना जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मम्मा, मम्मा को बाबा कोई भी कार्य देते थे, उस लक्ष्य को उसके अंदर में उनको बहुत क्लियर होता था, और जो कार्य करना है वो लक्ष्य बाबा ने दिया, बाबा ने टारगेट दिया, और उस टारगेट मतलब इतने समय में ये काम पूरा करना है, तो सचमुच में मम्मा जो है उसको बहुत पॉजिटिवली लेती थी और खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के करना शुरू करती थी, और सबको साथ लेकर के चलती थी और सबको उसमें इन्वॉल्व करती थी। तब वो काम जो है बाबा ने जिस लक्ष्य से दिया, जितना समय में दिया, वो पूरा कर पाती थी। एक बार हमारा एक चित्र है, वो चित्र को बाबा ने कहा कि पेंट करके ना भिजवाना है, अराउंड 100 पिक्चर्स उसके पेंट करने थे, और वो 100 पिक्चर्स पेंट करके बनाने थे। तो बाबा ने लक्ष्य दे दिया कि पेंट करना है। अब मम्मा जो थी उन्होंने कलर्स ना और पेपर्स और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उन चीज़ों को भी कलेक्ट किया, और सबको साथ लेकर के उस कार्य को करना आरंभ कर दिया। तो क्योंकि नवीनता के साथ थी और अथकपन के पॉजिटिव विचार के साथ कि भाई मुझे ये लक्ष्य है और इसको पूरा करना है, तो अपनी पूरी एनर्जी को उस डायरेक्शन में पॉजिटिवली लगाकर अपने लक्ष्य को वो पूरा कर पाते थे। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ लक्ष्य की क्लैरिटी है, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और देने की भावना है, वहाँ पर हमारे अंदर थकावट और रुकावट नहीं आती है। जैसे मम्मा को बाबा ने लक्ष्य दिया कि ये चित्र इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना लोगों को बांटने के लिए भेजने हैं, वो लक्ष्य दे दिया, और इसीलिए वो लक्ष्य को पूरा करने में अपनी एनर्जी को ना पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकी और सबको भी इन्वॉल्व कर सकी। तो इस तरह से लक्ष्य क्लियर है जहाँ पर, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, देने की भावना अंदर में थी, इसीलिए वो अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सके। तो लक्ष्य की अगर हमारे अंदर डाउटफुल होते हैं हम खुद कि ये हो सकेगा या नहीं ना, इसमें ये डिफ़िकल्टीज आने वाली है, ये चैलेंजेस आएंगी, और उससे अगर हम घबरा जाते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये चीज़ होगी तब होगा ये, या कंप्लेन करते, ये तो है ही नहीं इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ कंप्लेंट्स करेंगे या जहाँ पर डाउट करेंगे या जहाँ फियर में आएंगे हम, तो वहाँ पर हमारे उस लक्ष्य के अंदर हमारा खुद का डाउट है, तो फिर हमारी एनर्जी कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। हमारी एनर्जी को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर हमारा लक्ष्य, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होना ज़रूरी है। अब ये दोनों क्लियर हैं तब हम अपनी एनर्जी को टायरलेसली ना पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज करके हम अपने उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। फिर है कि हम अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे अंदर में है, वहाँ पर भी थकावट नहीं होती है तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा जो इस विद्यालय से जुड़े हुए लोग थे, अराउंड शुरू शुरू में यज्ञ की जब इस विद्यालय की जब शुरुआत हुई, तो अराउंड 385 लोग थे जो माउंट आबू में बाबा के साथ रहते थे। तो बाबा हमेशा ना जो याद रखते थे कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके और करेंगे, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 400 पीपल जो मेरे सामने हैं अभी, वो लोग भी मुझे देख करके वैसे ही बनेंगे, और उसके साथ साथ जो भी लोग संपर्क में आते हैं वो भी ना मेरे द्वारा मेरे कर्मों से सीख रहे हैं। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी हमें अथक बनाती है कि भाई मेरे कर्म जैसे होंगे उनको फॉलो करने वाले दूसरे लोग भी, तो जैसे माता पिता करते हैं बच्चे भी वैसा करते हैं ना। तो अगर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर हम एक बेहतर समाज के निर्माण के कार्य में लगे हैं या एक अच्छा समाज हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक व्यक्ति का नहीं, हर एक का इम्पोर्टेंस, हर एक व्यक्ति जो कार्य करता है जब हम उसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं, तो वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सैम्पल बनती है। तो जैसे माता पिता करते हैं बच्चे उनसे सीखते हैं, तो अगर एक परिवार के अंदर ना हार्मनी है तो समाज के अंदर भी वो ऑर्डरलीनेस आती है, और उसके कारण से पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो एक व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है, तो हम एक अपने आप को अगर समझे कि आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और मेरे आसपास सारी दुनिया रिवॉल्व हो रही है ना, और वैसी ही दुनिया बन रही है जैसा मैं हूँ, तो अगर हम ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसके साथ अगर अपनी एनर्जी को हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, बिना थके बिना रुके अगर हम उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो ही पॉजिटिव एनर्जी हम आसपास में भी क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें टायरलेस बनाती है, और उसके साथ कोई भी ड्रामा की सीन या हमारे आसपास की जो भी परिस्थितियाँ होती है ना, उसके अंदर अगर हमारे मन में वाई वाई वाले प्रश्न आते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या ऐसा क्यों हुआ, या वॉट एवर जो भी सिचुएशंस आती है, अगर हम उस सिचुएशन से लर्न नहीं करते हैं या उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि क्या मुझे इसमें से सीखने मिला, इसके अंदर भी क्या अच्छा है, वो चीज़ ना देख करके हम अगर वाई वाई करते हैं, तो फ्लाई यानी कि लाइट स्टेज नहीं होती है वहाँ पर, और लाइट नहीं है, हैवी है, अगर बर्डन लेकर के चल रहे हैं तो थकावट तो होगी ही होगी, इसलिए बर्डन फ्री रहना है तो वाई वाई नहीं करना है, लेकिन हमें वाह वाह करना है। बाबा हमें सिखाते हैं कि वाह वाह करो, हर ड्रामा की सीन, हर एक परिस्थिति जो आपके सामने आ रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें सीखने मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है, तो अंदर से हमारी कौन से गुण की विकास हो रहा है, कौन सी शक्ति हमारी बढ़ रही है, उसको अगर हम देखेंगे तो हम वाह वाह करेंगे। तो वो प्रॉब्लम नहीं ना, या वो कोई डिफिकल्टी नहीं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी के साथ हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाह वाह, जब हम वाह वाह करते रहेंगे हर सीन के अंदर, तब ना हमारे अंदर एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेंगी। और इसी तरह से अगर हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, न्यूनेस और उमंग उत्साह को हम बनाए रखते हैं, वहाँ पर भी हम टायरलेस रहते हैं ना। जहाँ पर हमारे अंदर उमंग उत्साह की कमी है, न्यूनेस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो थकावट आएंगी। हमारी दादी जानकी जी थी, जो 104 इयर्स की एज तक अपने इस विद्यालय को ना सस्टेनेंस दिया उन्होंने, 102 साल की उम्र में भी, 103 साल की उम्र में, 104 साल की उम्र में भी दादी ट्रैवल कर रही, हजारों माइल्स ट्रैवल करती थी ना अथक बन करके। दादी हमेशा कहती थी, मुझे जेट लैग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो वेस्ट है ना, थॉट मेरे अंदर में जो चलते हैं वेस्ट नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल है। तो जब पॉजिटिव थॉट है, प्योर थॉट है, तो थकावट नहीं होती है। जहाँ वेस्ट है, नेगेटिविटी है, वहीं पर थकावट होती है। तो इसीलिए दादी जानकी इतने सारे ट्रैवल करती थी, देश विदेश में ट्रैवल करती थी, इतनी बड़ी एज में ट्रैवल करती थी। तो 102-103 ईयर्स की एज में बाय एयर भी ट्रैवल करना थकाता है ना? तो कोई लोग होते हैं जो बस 4 घंटे का ट्रैवल करके आए और ऐसे थक जाते हैं ना। क्यों थक रहे? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि थकावट विचारों से हो रही है। इंसान कार्य करके नहीं थकता है। हाँ, शरीर की जो थकावट है उसको रेस्ट देना, वो तो जल्दी से ठीक हो सकता है। रेस्ट आधा घंटा 1 घंटा भी किया आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन मन से जो थकावट है, मन से जो रुक गया है ना, उसके अंदर में जो वो थकावट उसकी एनर्जी बहुत ड्रेन कर देती है। इसीलिए हमें मन से कभी नहीं थकना है। जो मन से थक जाता है वो हार जाता है, और जो मन से जीता हुआ, मन से अथक होकर के कार्य करता है वो ही जीतता है। इसीलिए हमें अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगानी है, एलिवेटेड थिंकिंग करनी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। हर परिस्थिति के अंदर हमारी सकारात्मक सोच को बनाए रखना, हमें क्या इसमें से सीखने मिल रहा है और उसको हम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, वो हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में मूव करके आगे बढ़ने के लिए सक्षम होंगे। और इसी में अगर आप देखें तो टायरलेस रहने के लिए जो है रेगुलरिटी का गुण भी हमें बहुत मदद करता है। हमें थक करके कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो वहाँ पर हमें वो प्राप्ति जो होनी चाहिए वो प्राप्ति का एहसास भी नहीं, और बार बार जैसे स्टॉप एंड स्टार्ट गाड़ी करके थकावट होती है, ऐसे ही मन के अंदर भी ना, अगर हम पॉजिटिव थॉट पर रेगुलर रीति से काम नहीं करते हैं, अभी किसके बारे में सोच रहे हैं, अभी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अभी एक्स वाई जेड के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बार बार चेंजेस फ्लक्चुएशंस अगर मन में अंदर में है, मन अगर हमारा स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो हमारी एनर्जी अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो चीज़ हमें ज़रूर थकाएगी। इसीलिए अपने थॉट के ऊपर हमें अवेयर रहना है कि किस प्रकार के विचार मैं अंदर में कर रही हूँ प्रोड्यूस, और कौन से विचारों को मैं कर्म में ला रही हूँ। तो एक है जानना, दूसरा मानना, और तीसरा उस पर चलना। तो वो चलना जो है ना, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। हम जान लेते हैं हाँ पॉजिटिव रहना चाहिए, मान भी लेते हैं कि पॉजिटिविटी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उस पर चलना, उस पर हम सब नंबर वाइज हो जाते हैं। कितना हम जो जी उसको यूज़ करता है उतना उसको बेनिफिट लेता है। ऐसे ही जानना, मानना और चलना, इस तीनों में भी हमारी समानता होनी चाहिए, और अगर हमने उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया है तो उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगी। जैसे खाना है आपके सामने ना, खाने की थाली के अंदर जो जो चीज़ें रखी हुई है, अगर आपको उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि भाई विटामिन्स मिलेंगे इस वेजिटेबल में से, फ्रूट में से, दाल में से मुझे प्रोटीन मिलेगा ना, इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इसमें से मिनरल मिलेगा, इसमें से आयन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रूप में है। जान लिया, मान भी लिया, यस दिस इज़ गुड फूड फॉर हेल्थ, मान भी लिया, लेकिन उसको खाया नहीं ना, उसको हजम नहीं किया, तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी ना। इसी तरह से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस, उनको हमें प्रैक्टिस में लाना भी उतना ही ज़रूरी है, तब हम उसकी स्ट्रेंथ को अनुभव कर सकते हैं। और रेगुलरिटी के साथ उसको करने से उसकी स्ट्रेंथ बनती है। एक दिन एक्सरसाइज करके शक्ति नहीं मिल जाती, एक दिन खाना खा के सारी शक्ति नहीं मिल जाती। रेगुलर हम खाना खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तब उसकी स्ट्रेंथ को अनुभव कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे सकारात्मक विचार भी हमें हर परिस्थिति में, हर जगह बनाए रखने हैं, तब हम उसकी स्ट्रेंथ को अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए मेडिटेशन हमारा एक बेस्ट सोर्स है, जिसमें हम अपने थॉट की क्वांटिटी को कम करते हैं और क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जितने पॉजिटिव क्वालिटी बढ़ाते हैं अपनी और क्वांटिटी को कम करते हैं, उतना मन थकता नहीं है, एनर्जेटिक रहता है, पावरफुल रहता है और उसके अंदर न्यूनेस, क्रिएटिविटी बनी रहती है। अगर हम अपनी न्यूनेस और क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, अगर डिपेंडेंसीज है किसी भी चीज़ में, अगर समझो कोई स्थूल चीज़ों को भी देख रहे हैं, चाहे वो आपका टीवी देख रहे हैं, समझो टीवी देख रहे हैं, उसके अंदर एवरीडे समझो हम घंटों लगा रहे हैं समय उन चीज़ों को देखने में, अब हमने अपनी क्रिएटिविटी को तो ख़त्म कर दिया, न्यूनेस को तो ख़त्म कर दिया। किसी ने कुछ क्रिएटिव किया है, उसको बैठकर हम सिर्फ देख रहे हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी कहाँ गई, हमारी न्यूनेस कहाँ गई? तो हमारी एनर्जी को हमने ब्लॉक कर दिया, और वहाँ पर जहाँ एनर्जी हम हमारी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर थकावट आएगी, हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, और ही नई एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, और ही वो चीज़ों को देख करके अपने अंदर में कभी कभी नकारात्मक, होपलेस या ना अलग अलग प्रकार के जो नेगेटिव विचार उत्पन्न करते हैं, उससे हम अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं। इसलिए हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने संग का भी संभाल करनी है। हमारा संग कैसा है, क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्या चीज़ें हम देखते हैं, क्या चीज़ें हम सुनते हैं, किस प्रकार से हम दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं, इस संग का हमें संभाल ज़रूर करनी है। अगर संग हमारा ठीक नहीं है, नेगेटिव एनर्जी बाहर से जो मिल रही है, सुन रहे हैं, वो हमारी एनर्जी ड्रेन कर रही है, तो थकावट आएगी ना, और फिर जब कार्य करने के लिए सचमुच में जो एनर्जी चाहिए वो अब है ही नहीं ना, तो कैसे करेंगे, वहाँ पर फिर रुक जाते हैं हम। और इसीलिए हमें अपने अंदर जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान रखना है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए मेडिटेशन का रेगुलर प्रैक्टिस करना है, अपने मन में हर कार्य के प्रति और हर लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं उनके प्रति गुड विशेष ना, शुभ भावना ज़रूर रखनी है। ये शुभ भावना जो है वो हमारी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाती है, और उसी के साथ साथ एक सकारात्मक वातावरण भी बनाती है ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक इस विद्यालय में जो हमको जो रेगुलर डिस्कोर्स हम पढ़ते हैं, उसमें बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम परमात्मा की याद में ना दिल्ली तक पैदल भी चले जाओगे तो भी थकावट नहीं होगी। तो कहने का भाव यही है कि विचार जो है ना उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, और परमात्मा से कनेक्ट होना मतलब संग, संग की संभाल करना। तो परमात्मा जो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है उसके साथ बुद्धि कनेक्टेड है, तो हमारा संग कितना पावरफुल है, और उसको याद करके हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो सर्वशक्तिमान, वो परमपिता परमात्मा की याद हमारे साथ है, तो हमारा कोई भी काम गलत नहीं होगा। और जब हमारी एनर्जी गलत दिशा में नहीं जा रही है तो थकावट भी नहीं होगी ना। इसीलिए टायरलेस बनने के लिए एक बेस्ट तरीका वो है परमात्मा से अपने मन और बुद्धि को कनेक्ट रखना। तो बैटरी जैसे चार्ज है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, वर्किंग एफिशिएंसी वहाँ बढ़ जाती है जहाँ पर बैटरी चार्ज है। बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज क्या होता है वास्तव में ना, अगर देखें हम सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हैं तो उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, अगर वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब सिस्टम डिसऑर्गेनाइज होता है उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं बैटरी, और जब सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है तो हम उसको कहते हैं बैटरी चार्ज हो गई। जब हम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना, उस प्लग में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर का सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, और जहाँ सिस्टम ऑर्गेनाइज है तो उसकी फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जब आत्मा का अंदर का सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड है तो उसकी भी फंक्शनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वहीं पर थकावट और रुकावट आती है। अगर हम अपने अंदर के सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखते हैं, आत्मा के सतोगुण हैं, उन सतोगुण को हम ऑर्गेनाइज्ड रूप में यूज़ करते हैं, तो हमारी फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वहाँ पर थकावट नहीं होती है। लेकिन जहाँ सिस्टम डिसऑर्गेनाइज हुआ ना, वहाँ पर नेगेटिविटी काम करने लगती है। जैसे आपकी अलमारी है, अगर बिल्कुल सेट है, हर चीज़ जो जहाँ जगह पर होनी चाहिए वहाँ है, तो आप आंख बंद करके कहीं दूर से भी किसी को फ़ोन पर भी बता सकते हैं कि फलाने सेकेंड ड्रॉअर के अंदर मेरी ना घड़ी रखी है, वो लेकर आना, इस कलर के बॉक्स के अंदर है। आप दूर से भी बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है और इसीलिए वहाँ पर डिफ़िकल्ट नहीं लगता। लेकिन अगर सब चीज़ें अलमारी में डंप की हुई है, तो एक चीज़ ढूंढनी है तब पूरी अलमारी बाहर आ जाती है, राइट? ऐसे ही अगर हम अपने अंदर के सिस्टम को ना, थॉट्स को पॉजिटिव रीति से चैनलाइज्ड रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, अपने गुण और शक्तियों को ना अवेयर होकर के यूज़ करते हैं, तो हमारी फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसीलिए हमें थकावट नहीं होती है। लेकिन जहाँ सिस्टम अंदर डिसऑर्गेनाइज होगा, वेस्ट पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है, यूजलेस बातें पड़ी है, पास्ट की इतनी बातें जो अंदर कचरा की तरह भर के रखी हुई है, वो चीज़ें हमें थकावट भी देती है, बोझ भी देती है, और बर्डन के साथ हम थकावट ही तो अनुभव करेंगे ना। हमें बर्डन फ्री करना है अपने आप को और तभी हम टायरलेस अनुभव कर सकते हैं। तो बर्डन अगर अंदर में है, चेक करें किस किस प्रकार के बर्डन अंदर में कैरी करके रखे हुए हैं। अगर पास्ट के कोई बर्डन जो काम की चीज़ें नहीं और पकड़ के रखी है अभी भी, तो उसे ना जाने दीजिए, लेट गो करिए। जो काम की है नहीं, समझो किसी ने 5 साल पहले कोई बात बोली थी, अभी भी हमने उसको पकड़ के रखा है। जो काम की नहीं है मेरे लिए, वो बैरियर है, रुकावट है, उसको छोड़े ना। कर्म दूसरे ने किया और पकड़ के हम रख रहे हैं, गलती दूसरे की है, कमी कमजोरी दूसरे की और हम उसको पकड़ के रख रहे हैं, तो हम अपने लिए ही बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, बोझ क्रिएट कर रहे हैं, और उस बोझ के साथ हमें थकावट ही मिलेगी ना। हम अथक होकर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अथक बनकर आगे बढ़ने के लिए पुरानी और पास्ट की यूजलेस बातों को हमें छोड़ना है, लेट इट गो ना। अपने आप को फ्रीडम दे, अपने आप को फ्री करे बॉन्डेजेस से, लाइट रिलैक्स्ड होकर के आगे बढ़ते चले अथक होकर सदा परमात्मा की याद में। यही शुभकामना आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।